गुरु गोवर्धन गुरु गोवर्धन गिर गोवर्धन गिर गोवर्धन जय गुरु गोवर्धन जय 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 गुरु गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन गोवर्धन जय गोवर्धन जय गुरु गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन गोवर्धन जय गोवर्धन जय गुरु गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गुरु जय गोवर्धन जय गोवर्धन गोवर्धन जय गोवर्धन जय श्री गोवर्धन 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 जय गोवर्धन जय श्री गोवर्धन श्री गिरिराज गोवर्धन की जय गोवर्धन परिक्रमा की जय गौप्यमानंदे हम अभी आए हैं हमारे इस्कॉन के गोवर्धन मंदिर से जहां हम प्रसाद लिए थे। हमारे प्लान बदल गए क्योंकि वहां तक हमें देर हो गई। वैसे गोविंद कुंड में प्रसाद लेना था लेकिन गोविंद कुंड पहुंचते हमें और देर दो घंटे लग जाते, इसलिए हमने प्लान बदल के यहीं पर प्रसाद पाया। आप सब बैठ सकते हैं, जो भक्त आए हैं अभी यहां पर आइएगा। यहां भी जगह है, छाया भी है, यहां पर इस तरफ आ जाइए आप सब। तो यहाँ इस तरफ आपके बाएं तरफ मेरे दाहिने तरफ यहाँ पर आप किनका दर्शन कर रहे हैं? गोवर्धन। ये आपको हर दिन दरगाह में नहीं मिलेगा दर्शन, तो अब आप हृदय भर के ये दर्शन कर लीजिए। याद रखिए, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये साधारण पर्वत नहीं है। गोवर्धन का हर एक पत्थर हर एक अंग दिव्य है, चिन्मय है। ये साक्षात भगवान के धाम से अवतीर्ण हुए हैं। गोवर्धन के पत्थरों को गोवर्धन शिला कहते हैं और उनकी आराधना होती है, उपासना होती है। जब अर्चा विग्रह होते हैं भगवान की श्री मूर्ति, तो उनको पूजा करने के पहले, उनकी अर्चना आरंभ करने के पहले प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करना आवश्यक रहता है, और उसके बाद फिर विस्तार से पूजा होती है। परंतु गिरिराज शिला या गोवर्धन शिला, इसके लिए ऐसे कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही यह पूजनीय है। इसलिए जिसके पास गोवर्धन शिला है, उसे ऐसे कोई प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ब्रज में आप देखेंगे जगह जगह पर गोवर्धन शिला की उपासना भक्त करते हैं। यहाँ पर भी हमारे इस्कॉन मंदिर में दो बड़े गिरिराज शिला हैं, कृष्ण और बलराम। एक थोड़े सफेद जैसे हैं और एक थोड़े से लाल रंग के हैं, सांवले रंग के हैं। तो कृष्ण और बलराम, ये दो शिला वहाँ पर पूजे जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी गोवर्धन शिला की पूजा किया करते थे, और जब रघुनाथ दास गोस्वामी से वो प्रसन्न हुए थे, तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को वही गोवर्धन शिला भेंट किया और साथ साथ एक गुंज माला भी दिया। गुंज माला, ये गुंज फल जो है, ये राधा रानी का प्रतीक है, और गोवर्धन तो श्री कृष्ण का प्रतीक है। इसलिए गुंज माला और गोवर्धन शिला भेंट करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा समझिए कि राधा कृष्ण का भेंट रघुनाथ दास गोस्वामी को किया, और उन्होंने कहा कि गिरिराज शिला या गोवर्धन शिला की उपासना बहुत सरल है। गिरिराज जी बहुत कृपालु हैं और जल्दी से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आप अगर केवल थोड़ा सा जमुना जल या गंगा जल अर्पण करोगे, साथ साथ आठ तुलसी के मंजरी, इससे अगर भक्तिभाव से ये चीजें अर्पण की जाती हैं, तो गिरिराज बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। सा चैतन्य महाप्रभु ने अपना निज वस्त्र भी रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी उस शिला को लेकर आए, शिला को उन्होंने एक थैली में रखा और उस थैली को उन्होंने अपने गले से लटका दिया, और जब भी वो जाते थे तो गिरिराज शिला उनके साथ में रहती और गुंज माला भी उन्होंने अपने गले में पहन ली। इस प्रकार से सदैव वो श्री राधा कृष्ण का संग कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि अगर तुमने ऐसे गिरिराज शिला की उपासना की, तो निश्चित ही शीघ्र ही तुम्हें श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में पूरा आश्रय मिलेगा, तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय होगा। ऐसे बताया जाता है कि ब्रजभूमि में गोवर्धन और यमुना जी, ये दो बहुत शक्तिशाली हैं, और जब वो कृपा बरसाते हैं तो उनकी कृपा के बल पर निश्चित ही हमें श्री श्री राधा कृष्ण की का आश्रय मिल सकता है और उनका उनके प्रति प्रेम भी मिल सकता है। तो यमुना जी का दर्शन तो हमने किया था, और आप में से थोड़े भक्तों ने यमुना जी में थोड़ा सा स्नान भी किया होगा। तरह तरह के स्नान होते हैं, एक तो है मंत्र स्नान, दूसरा है आचमन स्नान, और तीसरा है पूरा शरीर से स्नान करना। भले पूरे शरीर से स्नान न किया हो, लेकिन अगर हमने दर्शन भी किया है, थोड़े बूंद जल हमारे सर पे भी हमने स्वीकार किया है, तो वो भी स्नान के बराबर है, अगर हमने सही भावना से किया हो। तो जिस प्रकार से यमुना जी बड़ी कृपालु हैं, उसी प्रकार से गोवर्धन भी। रघुनाथ दास गोस्वामी जब यहां पर आए, तो जब भी वो एक जगह बैठते थे, तो अपने भजन के समय वो इस गिरिराज शिला को और गुंज माला को अपने नेत्रों से लगाते, और कभी कभी अपने वक्षस्थल से लगाते, और उनके प्रेम के आंसू बहकर वो दोनों भीग जाते। आज वही गोवर्धन शिला शायद राधा गोकुलानंद मंदिर में, यहाँ वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में, बेलगाम के राधा गोकुलानंद मंदिर में नहीं, वहां पर वो हैं। ऐसे बताया जाता है कि जब तक कोई ब्रजवासी हमें गोवर्धन शिला नहीं दे हमें नहीं लेकर जाना चाहिए, नहीं हमें कभी गोवर्धन के ऊपर चढ़ना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन साक्षात भगवान कृष्ण हैं और वो भगवान के भक्त के स्वरूप को भी धारण करते हैं, दोनों ही हैं। इसलिए चाहे हम गोवर्धन को भगवान का भक्त माने या गोवर्धन को भगवान कृष्ण माने, दोनों ही दृष्टि से देखा जाए तो हमें गोवर्धन के ऊपर कभी चढ़ना नहीं चाहिए, दूर से बस केवल हमें प्रणाम करना चाहिए। जब गोवर्धन के सामने भोग रखा गया था, गोवर्धन ने सारे ब्रजवासियों के प्रेम को स्वीकार किया था, तो उस समय श्री कृष्ण ने स्वयं ही बहुत ही विराट एक रूप धारण किया और कहा, शैलह अस्मि, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ। और उन्होंने वो सारे सामग्री को स्वीकार कर लिया। ये लीला आगे हुई और उस जगह का नाम है अणियोर, वहाँ गांव ही है अणियोर। बल्कि आगे जब हम जाएंगे तो वहां से हम परिक्रमा पथ से जो पक्का रास्ता है उससे हम अंदर जाएंगे इस वन के भीतर से, और वहां से जाते जाते आप दाहिनी ओर देखेंगे या उस तरफ, उस सारे क्षेत्र को अन्नकूट क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इस प्रांत में, इस क्षेत्र में ब्रजवासियों ने 5000 वर्ष पूर्व गोवर्धन को बहुत सारे सामग्री व्यंजन अर्पित किए थे, समोसे, कचौड़ी, चपाती, दाल, तरह तरह के मीठे पदार्थ, उनके बड़े बड़े पहाड़ बनाकर गोवर्धन को अर्पण किए थे। देखिए ये दृश्य आपको केवल ब्रज में मिलेगा, लोगों की कितनी श्रद्धा है, कितने लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं परिक्रमा करने के लिए। कोई अपने शारीरिक दुख के बारे में, कष्ट के बारे में सोचते नहीं है, बड़े उत्साह से, आनंद से परिक्रमा करते हैं। आपने रास्ते में भी देखा होगा, यहाँ तक कि महिलाएं भी हैं जो दंडवत परिक्रमा करती हैं। हम तो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं ना, ऐसे कई भक्त हैं, श्रद्धालु जो दंडवत परिक्रमा करते हैं, मतलब एक जगह में खड़े होकर दंडवत करते हैं, फिर जहाँ पे उनकी उंगलियां होती हैं फिर वहाँ उस स्थान में जाके फिर खड़े हो जाते हैं, फिर पूरा दंडवत करते हैं। दंडवत मतलब दंड के तरह सीधे आ जाना जमीन के ऊपर। इस प्रकार से उनको कई हफ्ते लग जाते हैं सारे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। ऐसे भी कई साधु होते हैं जो 108 दंडवत परिक्रमा करते हैं, मतलब एक ही स्थान में 108 बार दंडवत करना, उसके बाद आगे चलना, फिर 108 दंडवत करना। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि इसके लिए तो महीने लग जाते हैं। हमें ऐसे 108 दंडवत परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो पैदल परिक्रमा ही करें, उतना उचित है हमारे लिए अभी। परंतु कहने का अर्थ ये है कि कितने सारे लाखों लाखों श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं और कितने भक्ति से पूर्ण हृदय लेकर यहाँ पर गोवर्धन की का गुणगान करते हैं और परिक्रमा करते हैं। जैसे हम चकलेश्वर महादेव बता रहे थे, गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे लाखों लोग आते, 5 लाख से कम नहीं। तो गिरिराज गोवर्धन स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और साथ साथ वो भगवान के अवतार भी हैं, अब भगवान के दास भी हैं। श्रीमती राधा रानी अपने अन्य गोपियों से कहती हैं वेणु गीत में, आपको ये सब ये श्लोक कंठस्थ है ना, हंताय मध्य रबला हरिदास वर्यो, है ना, तो हम सब उसका उच्चारण करेंगे अभी, ठीक है। आप में से कितने भक्तों को ये श्लोक कंठस्थ है, हाथ ऊपर कीजिए, कम है, ठीक है, हम सब साथ में बोलेंगे। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं करोति सहगो गणयोस्तयोज पानीय सूय वसकंदर कंद मूले। ये वेणु गीत में आता है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में, और श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों से कह रही हैं कि हे सखियां अबला, जो ज्यादा बलवान नहीं है, कि देखो ये जो अयम ये गिरिराज है गोवर्धन हंता अयम, ये गिरिराज इतना भाग्यशाली है, ये अद्रि या गिरी गोवर्धन कितना भाग्यशाली है, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद है, कि श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमलों का स्पर्श उससे हुआ है। कृष्ण बलराम उनके ऊपर चरण कर रहे हैं अपने गौओं के साथ में और ग्वाल बाल मित्रों के साथ में, कितने भाग्यशाली हैं ये गिरि गोवर्धन। और देखिए ये इतने आनंदित हुए हैं, और इस आनंद के लक्षण क्या है कि देखो ये सारे जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये सब घास है, ये सब खड़े हैं, ये सब गोवर्धन के ऊपर जो रोम खड़े हो गए हैं केवल आनंद की वजह से, क्योंकि कृष्ण बलराम के चरणों का स्पर्श हुआ है। मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर, इसलिए वो पूरा सम्मान अर्पित कर रहे हैं। पानीय सूय वसकंदर कंदम मूलैः, और गोवर्धन नाना प्रकार से कृष्ण बलराम और उनके गौओं को और मित्रों की सेवा करते हैं। यहाँ पे कई झरने हैं, अभी फिर से जैसे हम पहले बता रहे थे, हम वर्तमान काल का प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, हालांकि हम झरनों को देख नहीं सकते अभी, लेकिन जिनकी दृष्टि है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक रूप में राधा कृष्ण की लीलाएं विद्यमान है, चल रही हैं, कभी बंद नहीं होते, ये नित्य लीला स्थान है भगवान का। ऐसा नहीं कि जब प्रकट लीला भगवान की समाप्त हो जाती है तो लीला समाप्त हो जाती है, नहीं, अप्रकट रूप में तो भगवान के धाम में लीला चलती ही रहती है। तो झरने हैं, कुंड हैं, सरोवर हैं, जो कि भगवान कृष्ण और उनके मित्रों का प्यास बुझाते हैं, उनको स्नान करने के लिए अच्छा रम्य एक वातावरण देते हैं, साथ साथ तरह तरह के कंद मूल इत्यादि फल फूल आदि सब कुछ मिलता है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, शहद आदि उनके भूख प्यास मिटाने के लिए, उनको छाया भी देने के लिए कई गुफे हैं, जब वो थक जाते हैं विश्राम करना चाहते हैं तो गुफों में जा सकते हैं, जो गर्मी में ठंडक पहुंचाते हैं, जो जाड़े के समय में गर्मी पहुंचाते हैं। तो गोवर्धन ने ऐसी सारी व्यवस्था की है जो भगवान कृष्ण के लीलाओं के लिए अति अनुकूल है। इस प्रकार से गोवर्धन ऐसी सेवा कर रहे हैं राम कृष्ण के, कृष्ण और बलराम के, कि हम ऐसी सेवा तो नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसे राधा रानी कहना चाह रही हैं गोपियों से। वो कहती है कि हमारे ऐसे कहां सौभाग्य कि हम इस प्रकार से कृष्ण की सेवा करें जैसे कि गोवर्धन कर रहा है। इसलिए गोवर्धन जो है कोई साधारण भक्त नहीं है, वो हरिदास वर्य, वर्य मतलब सर्वश्रेष्ठ है, गोवर्धन श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। केवल हरिदास नहीं, हरिदास वर्य हरिदासों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। वैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि उद्धव एक हरिदास है, युधिष्ठिर महाराज भी हैं, और ऐसे यहां गोवर्धन है, लेकिन ये वर्य सारे वैष्णवों में से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो पूर्णतया भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें गोवर्धन को दोनों दृष्टिकोण से देखना चाहिए, भक्त हैं और भगवान भी हैं, परंतु क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सावधान एक चेतावनी हम सबको दी है कि आप अवश्य कहां चढ़िए मत, दूर से ही सम्मान कीजिए। वहां पर कभी भी चैतन्य महाप्रभु गए नहीं, यहां तक कि जब गोपाल जी की मूर्ति की स्थापना हुई ऊपर, भगवान ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया और ये कथा हम गोविंद कुंड में जाके सुनेंगे। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और गोपाल जी का मंदिर उन दिनों ऊपर हुआ करता था। अब वो विग्रह तो नाथ द्वारा में है, श्री नाथ जी के नाम से विख्यात है वो, वही गोपाल जी। तो चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी का दर्शन तो करना चाहते थे परंतु गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने दर्शन नहीं किया। अब गोपाल जी तो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या इच्छा है, तो उन्होंने कोई अपने ब्रजवासी भक्तों के हृदय में उनको स्फुरित किया कि वो ऐसे कोई बात फैलाएं कि मुगल जो सैनिक है वो आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए। आप जानते हैं कि इस इलाके में कई ऐसे मंदिर हैं, विग्रह हैं, जिनमें बहुत ही उत्पात किया इन मुगलों ने। तो जब ये अफवाह फैल गई तो यहाँ के जो पुजारी थे, भक्त थे, उन्होंने गोपाल जी को गांथुली ग्राम नाम की जगह में ले लिया, वहां पे स्थानांतरित किया और वहां पर चैतन्य महाप्रभु पे जाके अच्छी तरह से गोपाल जी का दर्शन कर पाए। तो गोपाल जी ने इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण की, चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिया और लिया। तो माधवेंद्रपुरी तो गए थे ऊपर क्योंकि उन्हें भगवान का विशेष आदेश मिला था कि जाओ मेरी मूर्ति की स्थापना वहां पर ऊपर करो, इसलिए वो गए, अन्यथा वो भी नहीं जाते। तो ये है वो गोवर्धन जिसके यहाँ तले हम बैठे हैं। तो गोवर्धन कैसे प्रकट हुए यहाँ इस धरातल के ऊपर, ये प्रश्न एक बार नंद महाराज ने अपने भाई उपानंद से किया। तो उपानंद ने कहा कि यही प्रश्न एक बार महाराज पांडु ने किया था, जो पांडवों के पिता थे, उन्होंने ये प्रश्न भीष्म देव पितामह से किया था और भीष्म देव ने सारी कहानी बताई, ये भी पौराणिक कथा है। तो हुआ ये कि बहुत साल पहले की बात है, सत्ययुग की शुरुआत की बात है, कि शलमली द्वीप में वहां पर द्रोणाचल नाम के पर्वत थे। तो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में प्रकट हुए गोवर्धन, यही गोवर्धन साक्षात। जब श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में विचार कर रहे थे कि मुझे अब अवतार लेना चाहिए इस ब्रह्मांड के भीतर पृथ्वी लोक के ऊपर, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा कि हे राधे, अभी हमें नीचे जाने का समय हो गया है अवतार लेने का, तो तुम भी तैयारी करना यहाँ भौम वृंदावन में आने के लिए, वहां पर भी हमें बहुत सारी लीलाएं करनी है। तो राधा रानी ने कहा मैं तब जाऊंगी पृथ्वी लोक के ऊपर जब वहां पर ब्रजधाम होगा, जमुना होंगी और गोवर्धन होंगे। तो कृष्ण ने उत्तर दिया चिंता नहीं करना, ये तीनों पहले से ही प्रकट हो चुके हैं पृथ्वी लोक के ऊपर, इसलिए शीघ्र तुम भी अवतार लेना। तो उस समय, इसके पहले की बात है कि शालमली द्वीप और द्रोणाचल पर्वत का एक पुत्र हुआ गोवर्धन, और वही गोवर्धन गोलोक वृंदावन से यहाँ पर प्रकट हुए थे। सब जगह बात फैल गई कि गोलोक वृंदावन से गोवर्धन पधारे हैं, वो प्रकट हुए हैं यहाँ पर हम सब के ऊपर कृपा बरसाने के लिए। गोवर्धन बहुत विशाल थे और ऐसे बताया जाता है कि वो 15 योजन लंबे थे और 12 योजन चौड़े थे और 8-9 योजन ऊंचे थे। तो इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी गोवर्धन की, ये सत्य के पहले की बात है। और सारे पर्वत ब्रह्मांड के वहां पर पहुंचे शलमली द्वीप में गोवर्धन को नमस्कार करने के लिए। हिमालय पर्वत वहां पहुंचे, सुमेरु पर्वत वहां पर पहुंच गए, सारे पर्वत वहां पहुंच गए और नमस्कार करके गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। और उन्होंने कहा कि आप पर्वतों के राजा हैं, आप साक्षात गोलोक वृंदावन से यहाँ पर पधारे हैं, प्रकट हुए हैं, आप व्रज के चूड़ामणि हैं। चूड़ामणि मतलब शिरोमणि, सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है आप व्रज के। ऐसे उन्होंने गोवर्धन को अपना राजा माना और फिर सब अपने अपने स्थान में चले गए। काफी समय बीत गया। इस दौरान ये हुआ कि एक मुनि थे जिनका नाम था पुलस्त्य मुनि। पुलस्त्य मुनि वहां से शर्मली द्वीप में गए थे और फिर उन्होंने गोवर्धन का दर्शन किया शर्मली द्वीप में और देखा कि कितना सुंदर है ये पर्वत, कितना रम्य स्थान है। यहाँ पे जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, औषधियां हैं, पेड़ हैं और झरने हैं, नदियां हैं, कुंड हैं और जो पक्षी हैं, बहुत ही आकर्षक और रमणीय स्थान है। तो पुलस्त्य मुनि के मन में विचार आया कि काश मैं गोवर्धन के ऊपर तपस्या कर पाता। फिर पुलस्त्य मुनि गोवर्धन के पिताजी द्रोणाचल पर्वत के पास गए और कहने लगे कि हे द्रोणाचल, मैं काशी का निवास करने वाला हूँ, काशी में मैं निवास करता हूँ और वहाँ तपस्या करता हूँ गंगा जी के तट पर। वहाँ सब कुछ बहुत ही अनुकूल है मेरे तपस्या के लिए, परंतु केवल एक कमी है, एक वस्तु का अभाव है वाराणसी में, और वो क्या है कि वहां पर कोई पर्वत नहीं है जिसके ऊपर जाके मैं तपस्या कर सकूं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया मुझे गोवर्धन आप दे दीजिए, यानी गोवर्धन को मैं वाराणसी या काशी के पास ले जाता हूं और वहां गोवर्धन के ऊपर बैठ के मैं तपस्या करना चाहता हूं। अब द्रोणाचल जो है अपने पुत्र गोवर्धन से बहुत ही आसक्त थे और बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, बल्कि वे रोना शुरू कर दिए, आंखों से आंसू आ गए द्रोणाचल पर्वत की, मेरे बेटे से मैं कैसे अलग हो सकता हूँ। जैसे जब विश्वामित्र मुनि आए थे दशरथ महाराज के पास और वो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ दे दीजिए, कई ऐसे राक्षस और असुर हैं जो हमारे यज्ञ स्थली में बहुत ही उत्पात करते हैं और इसलिए इन असुरों का वध करना है। दशरथ महाराज बहुत दुखी हो गए, वो इतने आसक्त थे श्री रामचंद्र से कि श्री रामचंद्र उनके लिए अपने उनके प्राण से भी ज्यादा प्रिय थे। दशरथ महाराज ने उनसे कहा, मैं स्वयं चलता हूँ, मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस छोटे से 16 वर्षीय राम को आप क्यों ले जाना चाहते, ये तो इतने कोमल है, नाजुक है, अभी तक पूरे मर्द भी हुए नहीं है। परंतु विश्वामित्र मुनि ने एक नहीं मानी, वशिष्ठ मुनि ने आखिर उनको समझाया। दशरथ महाराज भी थोड़े भयभीत थे कि विश्वामित्र मुनि कहीं शाप न दे दे, क्योंकि विश्वामित्र मुनि धीरे से क्रोधित होते जा रहे थे। तो उसी प्रकार से यहाँ जब पुलस्त मुनि धीरे से क्रोधित होते जा रहे थे, गोवर्धन जो बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने समझ लिया कि यहाँ धोखा है, यहाँ कोई खतरा है। तो उन्होंने अपने पिता गोवर्धन से कहा कि पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए। पुलस्त्य मुनि से उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, पहले ये मुझे बताइए कि मैं तो इतना विशाल हूँ, इतना भारी हूँ, आप मुझे कैसे ले जाएंगे काशी। तो पुलस्त्य मुनि ने कहा, मैं अपने दाहिने हाथ में आपको ले जाऊंगा। तो गोवर्धन समझ सके कि ये मुनिवर मुनि जो है बहुत शक्तिशाली है, ऐसा कर भी पाएंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं आपके साथ आने के लिए, परंतु एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि अगर आप मुझे कहीं नीचे धरातल के ऊपर रखेंगे, जहां भी आप मुझे रखेंगे मैं वहां से हिलूंगा नहीं। तो पुलस्त्य मुनि ने स्वीकार कर दिया इस शर्त को, गोवर्धन पर्वत को उठाया और उठाकर आकाश पथ से चलते आए और भगवान की इच्छा से, भाग्य से, वो जब काशी जा रहे थे तो ब्रज के ऊपर से जा रहे जाने लगे, तो गोवर्धन ने ब्रज भूमि को देखा अपने ही भूमि को देखा, पहचान लिया कि अरे ये तो मेरी भूमि है, क्योंकि वो तो आए थे गोलोक से और यहाँ उन्होंने फिर से गोलोक साक्षात उनका गोलोक का प्रकट प्रकाश भौम वृंदावन को देखा और फिर उन्होंने सोचा कि यहीं पर मुझे रहना चाहिए। तो उन्होंने पुलस्त मुनि के मन में ऐसी इच्छा डाली या ऐसे शरीर में विकार कर दिया कि पुलस्त मुनि को थोड़ा विश्राम के लिए यहाँ आना पड़ा, प्रकृति के बुलाव को का उत्तर देना पड़ा। तो यहाँ पर उन्होंने ब्रजभूमि में गिरिराज गोवर्धन को रखा और वो चले गए अपने काम करने के लिए। उस समय उनको याद नहीं रहा कि गिरिराज ने ऐसे शर्त रखा था और उन्होंने इस शर्त को स्वीकार किया था। और जब वो स्नान करके वापस आए तो गिरिराज को फिर से उठाने गए तो गिरिराज उठे नहीं, फिर दोनों हाथों से प्रयत्न किया फिर भी नहीं उठे। बहुत शक्ति लगाई पुलस्त मुनि ने, फिर भी नहीं उठे गिरिराज गोवर्धन। तो पुलस्त मुनि ने गिरिराज से कहा, अरे गिरिराज ये क्या है, इतनी दूर तक तो आप हमारे साथ चले, अब क्यों नहीं आप चल रहे हो हमारे साथ। तो गिरिराज ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अगर आप कहीं मुझे नीचे रख दोगे तो मैं उस स्थान से हिलूंगा नहीं, तो आपने मुझे यहाँ रख दिया और अब मैं इस स्थान से मैं दूर जाऊंगा नहीं। तो पुलस्त मुनि को क्रोध आया और क्रोध आकर उन्होंने गिरिराज को श्राप दिया और कहा कि मैं श्राप देता हूँ कि आप एक सरसों के बीज की मात्रा से हर दिवस आप कम होते जाओगे, घटते जाओगे। और उस दिन से आज तक प्रति दिवस गोवर्धन एक सरसों के बीज की मात्रा में घटते जा रहे हैं। इसलिए पहले गोवर्धन इतने विशाल थे और आज गोवर्धन का प्रकट रूप उतना विशाल नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। आज थोड़े से आगे अणियोर में हम देखेंगे ज्यादा से अधिक वो 80 फुट की ऊंचाई पर है जमीन से, लेकिन पहले कितना लंबा हुआ करता था। सुनंद जो नंद महाराज के और एक भाई थे, उन्होंने नंद महाराज को कहा इस कहानी को सुनने के बाद कि ऐसे भी कहा गया है शास्त्र में कि 10,000 वर्ष तक गोवर्धन और यमुना जी प्रकट अवस्था में रहेंगे और श्रद्धालु भक्त इनका लाभ उठा पाएंगे, परंतु 10,000 वर्ष बाद में ये अप्रकट हो जाएंगे और उसके बाद कलयुग का पूरा प्रभाव आ जाएगा। जब तक गोवर्धन और यमुना जी हैं तब तक वो कलयुग के प्रभाव को दूर रख रहे हैं, जिस प्रकार से समुद्र का तट समुद्र को दूर रखता है और वहीं तक सीमित रखता है, उसी प्रकार से गोवर्धन और यमुना ये कलयुग के प्रभाव को दूर रखे जा रहे हैं, लेकिन 10,000 वर्ष बाद में जब ये अप्रकट हो जाएंगे तो फिर कलयुग का पूर्ण रूप से प्रभाव आएगा। तो ये 10,000 वर्ष जो है ये भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि हमारे ये आंदोलन है ये 10,000 वर्ष के लिए है, इसलिए हमारे पास ज्यादा अधिक समय नहीं है, शुद्ध भक्त बनना है इसी जन्म में, हमें इस जन्म के बाद और कहीं जन्म लेना, फिर कहाँ से जाना, कौन से लोक में जाना आना, स्वर्ग लोक में या कहाँ भी जाके आना, फिर यहाँ आके क्या अवस्था होगी, क्या परिस्थिति होगी यहाँ पर, हम नहीं कह सकते। तो हमारा प्रयास तो यही रहना चाहिए कि हम इसी जीवन के अंत में हम भगवान के धाम चले जाएं। तो जब हम यहाँ पर गोवर्धन के परिक्रमा करने आते हैं, ब्रजभूमि की परिक्रमा करने आते हैं, तो हम इस उद्देश्य से आना चाहते हैं, सेवा भाव से, कि हम उधर के गोवर्धन जाने के लिए यहाँ के गोवर्धन में आ रहे हैं। और ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए, निज निकट निवासम देही गोवर्धनत्वम। कई भक्त पूछ रहे थे कि ये भजन हम कब गाएंगे, कल गाएंगे, आज देखते हैं कि जितना हो सके उतना परिक्रमा करेंगे और फिर कल थोड़ा समय निकालकर रघुनाथ दास गोस्वामी का ये सुंदर भजन हम गाएंगे। गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। और यहाँ जिस स्थान में हम बैठे हैं, मेरे पीछे की ओर यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, यह कुंड, इस कुंड का नाम है दान निवर्तन कुंड। यहाँ पर लीला ऐसी हुई थी कि एक बार जब श्रीमती राधा रानी और गोपियां वो राधा कुंड में थी, तो श्रीमती राधा रानी की, राधा रानी के अनेक जासूस होते हैं, जैसे तोते होते हैं, वो सब जगह जाते हैं, खबर पहुंचाते हैं। तो उनके एक तोते ने आकर उनको खबर पहुंचा दी कि गोविंद कुंड में एक महायज्ञ होने जा रहा है। तो राधा रानी और उनकी गोपी सखियां जो हैं, वो बहुत सारा दूध, मक्खन, दही आदि मटकों में भर के अपने सर पे रख के वो आने लगी। ऐसा नहीं है कि श्रीमती के, केवल श्रीमती राधारानी के पास ऐसे तोते हैं तो जासूसी करते हैं, श्री कृष्ण के पास भी ऐसे तोते हैं। तो श्री कृष्ण के तोतों ने उनसे कह दिया कि वहाँ राधा रानी गोपियों को लेकर आ रही है, बहुत सारा दूध है, मक्खन है, बहुत कुछ है वहाँ। तो श्री कृष्ण ने जल्दी से अपने मित्रों को बुलाया, सखों को बुलाया, आओ आओ जल्दी आओ, ऐसा हो रहा, सब आ रहे हैं, तो अपने अपने जगह में सब खड़े हो जाओ। तो इसी स्थान में सब खड़े रहे और फिर वहां से श्रीमती राधारानी गोपियों के साथ आई और श्री कृष्ण वहां सामने खड़े हुए। कहां जा रहे हैं आप लोग, हर रोज आप लोग ऐसे आते हैं जाते हैं, इतना सब बेचते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन कर लेने देने का कोई नाम ही नहीं लेते। ऐसे तो काम नहीं करना चाहिए, कर देना तो उचित है। कर मतलब टैक्स, दान। तो श्रीमती राधारानी ने कहा कि दान देना क्यों, क्या बात है, क्यों देना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो आपका क्षेत्र नहीं है, आपसे यहाँ जाती आती है, तो आपको देना चाहिए। ऐसे काफी वाद हो गया और फिर कहा ठीक है ठीक है, बताओ कितना दान देना है। फिर आपस में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम विश्लेषण कर लेते हैं कितना आंकड़ा होगा। जैसे कभी तुलना के विचार को देख, कितनी गाड़ियां हैं, कितना देना, तो कृष्ण भगवान भी अपने मित्रों के साथ बैठे कि भाई कितना कर लेना चाहिए इनसे। तो कृष्ण भगवान ने कहा मुट्ठी भर जो है रत्न दे दो आप। अरे मुट्ठी भर रत्न नहीं होगा। और ऐसे वाद होते 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 फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, आप यूं ही चले जाओ आगे गोविंद कुंड में, सारे आपके पदार्थ दे दो, लेकिन ललिता जी को यहाँ रखना, हम रखेंगे ललिता देवी को, ताकि आप आओगे वापस, जब आप दान दोगे तब ललिता जी को हम छोड़ेंगे। तो ललिता देवी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने अन्य गोपियों से कहा माता यशोदा को बुलाओ, जटिला को बुलाओ। जटिला कौन है पता है ना, श्रीमती राधा रानी की सास है, उनको बुलाओ। और गोविंद कुंड में जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनको भी बुलाओ, फिर देखते हैं ये किस प्रकार से ऐसे हमें कैदी रखते हैं। तो तब तक श्रीमती राधा रानी की और एक सखी मित्र सखी थी जिनका नाम था नंदी मुखी, वो आई। अरे शांति शांति, झगड़ा नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, अब देखो कृष्ण ऐसा है कि ये तो बहुत पवित्र कन्याएं हैं, अगर आप ऐसे बर्ताव करोगे इनके साथ में इनका नाम खराब हो जाएगा, फिर कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए आप इनको जाने दो, वो अपने पदार्थ वाहन दे के आएंगे और कल जब लौटेंगे तो आप पूरा सा कर या दान जो है वो कर देंगे, कल आप वसूल कर लेना। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा लेकिन भूलना नहीं। हाँ ठीक है। तो गोपियां आगे चली गई, गोविंद कुंड में जाकर वापस आने लगी अगले दिन। अब अगले दिन गोपियों ने योजना बनाई कि कृष्ण को आज छोड़ना नहीं है, कल कृष्ण ने राधा रानी को इतना कष्ट दिया, इतना अपमानित किया, कर के लिए रोक दिया, तो आज हम सबक सिखाएंगे। तो गोपियां जो हैं अलग अलग जगह छुप गई, सब अन्य गोपियों को बुलाया, तो सारे गोपियों का सेना हो गया यहाँ पर। और जैसे ही कृष्ण आए यहाँ पर थोड़े सखों को लेकर, इस आशा से कि हमें बहुत आज कर मिलने वाला है, बहुत टैक्स मिलेगा, दान मिलेगा, तो गोपियां उन पर टूट पड़ी और तहस नहस हो गया वहां पर, ऐसे पिटाई हो गई सबकी, सारे गोपों की, वहां पर बेचारे रह गए। और ये लीला यहाँ पर हुई। तो इस तरह की लीलाएं ब्रजभूमि में, गोवर्धन में चलती रहती है, ऐसी लीलाओं की कल्पना भी हम अन्य क्षेत्रों में नहीं कर सकते। ऐसे कभी सुन सकते हैं, कभी अन्य भगवान के किसी अवतार के साथ ऐसी लीलाएं होती हैं, कभी संभव नहीं है, क्योंकि ये माधुर्य भूमि है, यहाँ भगवान का, के भगवान के ऐश्वर्य का प्राधान्य नहीं होता है, केवल माधुरी का प्राधान्य होता है, इसलिए ऐसी सुंदर मधुर लीलाएं होती हैं। यहाँ पर ब्रज में कोई श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, इसलिए ऐसी लीलाएं यहाँ पर होती हैं। तो अब हम आगे यहाँ से चलेंगे, परिक्रमा पथ से हम अंदर जाएंगे, वो भी परिक्रमा मार्ग है वन के भीतर से, और फिर उस ओर आप देखेंगे वो अन्नकूट क्षेत्र, याद रखिएगा, और वहाँ भगवान कृष्ण के निर्देशनानुसार सब ब्रजवासियों ने सब अन्नकूट के सामग्री रखी थी, तो वो वहाँ पर होगा। और आगे चल के फिर हम अणियोर गांव में जाएंगे। अणियोर गांव वो गांव है जहाँ पर गोवर्धन ने कहा था अणियोर अणियोर मुझे और चाहिए और चाहिए, उसके बाद वो नाम हो गया अणियोर। अणियोर के पास में गोपाल प्रकट स्थली है, जहाँ वो गोपाल जो अब नाद्वारा में है और जिनकी उपासना माधवेंद्रपुरी ने की, वो प्रकट स्थली वहां पर है, लेकिन वहां बैठने का जगह नहीं है, इसलिए हम चलते जाएंगे और ये सारी कथाएं हम गोविंद कुंड में करेंगे। जाते जाते रास्ते में हमें संकर्षण कुंड भी लगेगा, लेकिन वो बाईं ओर होगा और वो शायद हम वहां पर रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां इतने भक्तों के लिए जगह नहीं होगा। तो अभी हम उठेंगे और जल्दी से परिक्रमा करते करते हम वहां से जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।
काफी लोग कूड़े इकड़े मारे नहीं सोते,
निवेदन करते हैं कि कृपया एक साथ में रहिएगा, कोई इधर उधर स्वतंत्र रूप से नहीं जाइए, अगर एक भी भक्त इधर उधर चले गए तो उनको ढूंढने के लिए फिर कठिनाई हो सकती है। हरे कृष्णा।
भद्रसेन को
पानी है, इज्जत माइन
आया इधर है,
तो सबको ले जाना आपको।
हरे कृष्णा। हम आगे दूसरे परिक्रमा में गोवर्धन के अंदर के रास्ते से मिलने वाले हैं, तो कृपया सभी भक्त कीर्तन मंडल के साथ आगे पीछे नहीं जाए, अगर जाएंगे तो भरोसा जो जाएंगे आपके जगह से जाएंगे, तो कृपया करके विनती है सभी भक्त का नहीं साथ रहिए। और अगर कोई आगे में जाता है तो हमारा अगला लक्ष्य गोविंद कुंड है, याद रखिए।
वो लाल बैग किसका था?
लाल वाला
बैग
में गया।
वो बैग ले लिया
किसी का दुर्गा घूम घूम मिला हुआ है, जिस किसी का है आके ले सकते हैं, आप जब हमारा किसी का घूम हुआ है तो यहाँ आके ले सकते हैं।
Thank you. I'm going to go to the hospital.